In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو رمضان تفسیر کا جو سیشن چل رہا ہے، جو کہ درس دراصل تفسیر تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کری اور دوسرے اکابرین کی تفسیر انہوں نے یہاں پہ نقل کری. ہم یہاں پہ بیٹھ کے تفسیر نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس کے کیپیبل نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا علم ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تفصیلی اور گہرائی علوم کی چاہیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو تفسیر کا نام صرف اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم یہاں پر زیادہ سے زیادہ صرف اس تفسیر کا درس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اسی کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اکابرین نے پہلے سے کیا ہوا ہے، جو محنت پہلے سے کی ہوئی ہے اسی کو بس آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ درس قرآن کا جو لفظ ہے اس کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے. تو اس درس قرآن کے اندر ہم سورہ انعام کی آیات نمبر 74 سے 81 تک، یعنی 74 سے 81 تک کے خلاصہ تفسیر پڑھ کے کل مکمل کر چکے تھے، اور ہم نے معارف و مسائل پڑھنے شروع کر دیے تھے. اصل کتاب کا صفحہ نمبر 380 بنتا ہے جہاں پر ہم تھے، اور آپ کی اسکرین پر بھی کچھ شیئر ہوا ہوگا معارف و مسائل کا یہ والا حصہ. تو اس میں جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عنوان باندھا تھا وہ دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے، ٹو نیشن تھیوری، جو کہ بر صغیر کے اندر بڑی مشہور ہے. جو بھی اس ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ ہی ہوتا ہے، اور باقی جو دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ان کو گریڈز حاصل کرنے کے لیے اگر مطالعہ پاکستان کا پیپر دینا ہوتا ہے، یا جو بھی ہند کی تاریخ کا اگر کوئی انڈیا میں پیپر وغیرہ ہوتا ہوگا تو اس کے لیے پھر ان کو پڑھنا پڑ ہی جاتا ہے. بے شک دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی رٹا لگانا پڑتا ہے ٹو نیشن تھیوری کیا چیز تھی وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں انڈیا میں تو خیر یہ نہیں پڑھاتے ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے پاکستان کے ہی کا ٹاپک ہے کیونکہ پاکستان بنایا گیا دو قومی نظریے کے بنیاد پر. بہرحال تو دو قومی نظریہ اس کے تحت پھر حضرت نے پہلے تو لکھا تھا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے، اسلام کے رشتے سے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب اسلام ہوگا تبھی یہ رشتہ ہوگا. ظاہر ہے کوئی ہندو تو پھر اسلامی رشتہ نہیں بنا سکتا، کوئی یہودی، کوئی دہریہ، کوئی ایگنوسٹک، وہ تو پھر اسلامی رشتہ نہیں بنائے گا نا. اسلامی رشتہ کون بنائے گا؟ جس کے پاس اسلام ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو ہو گیا نا اسلامی رشتہ بنانا، تو وہ تو اسلام ہوگا تبھی بنے گا ورنہ نہیں بن سکتا. اور دوسرا یہ کہ دوسرے رشتوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے یا کم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ اہم ہے اور کتنا زیادہ غیر اہم ہے. اگر غیر اہم ہے تو اسلامی رشتہ بھی غیر اہم ہوگا، اور اگر اہم ہے تو پھر اسلامی رشتہ بھی اہم ہوگا. بالکل کامن سینس والی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کا موازنہ جو ہے وہ خاندانی رشتوں سے ہی زیادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ خاندان اگر زیادہ اہم ہوگا تو خاندانی رشتے بھی زیادہ اہم ہوں گے، اور اگر خاندان ہی کی اہمیت نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے خاندانی رشتے کی بھی اہمیت نہیں. یہ بالکل فطری سی بات ہے، سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی تھی کہ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، ان کا ماڈل ہے، ان کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے. قد کانت لکم اسوۃن حسنۃن فی ابراہیم والذین معہ. ٹھیک ہے، قد کانت لکم، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے जब मॉडल बना दिया हमारे लिए इसको, तो फिर अब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं फॉलो करेंगे तो फिर नुकसान से हम नहीं बच सकते हैं। ओके किसी छोटे बच्चे ने तो ये नहीं कहा ना कि ये तुम्हारे लिए मॉडल है। अब जाहिर है छोटे बच्चे की बात की क्या अहमियत, भाई उसने कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें उस पर अमल भी करना है। लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही, किसी बड़े बच्चे की भी बात नहीं हो रही, हत्ता कि किसी इंसान बुजुर्ग की भी बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर परवरदिगार आलम की बात हो रही है। ठीक है, जिसका हम दिया हुआ खाते हैं, ठीक है ना, इसे तो कम अज कम अहमियत बन जानी चाहिए ना, जिसका दिया खाते हैं। ठीक है, तो अब उसकी ना माने, उसके गुण ना गाएं और उसकी बात ना माने, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना कि फिर भी सब ठीक रहेगा। तो ये लाजिम है हमारे लिए। बहरहाल फरमाए कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस पर हंसना और काबिल इक्तदा है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का ये अमल कि उन्होंने अपनी नस्बी और वतनी बरादरी से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे गलत माबूदों से बेजार हैं, और हमारे तुम्हारे दरमियान बोझ व अदावत की दीवार उस वक्त तक हायल है जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत इख्तियार ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बहुत अहम नुक्ता कल साजिश ने बयान किया था कि कुफर से बेजारी जो है ना, ये शर्त है। बेजारी क्या चीज होती है? बेजारी का मतलब ये होता है कि आप उससे मुतमइन नहीं है, आप उससे जो है वो, यानी क्या बेजारी का एंटोनिम क्या बनेगा, यानी जारी बनेगा, वैसे तो जारी बे लगा करके तो बेजारी बनता है ना, तो फिर जारी, लेकिन जारी का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से कोई दूसरा लफ्ज अगर आप में से किसी के जहन में आ रहा है तो बिला तकल्लुफ बताइए, हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। राजी होना, हाँ बिल्कुल सही बात है, राजी होना। ठीक है, यानी आप उससे राजी, यानी बस ठीक है, कोई मसला कोई थोड़ी है। ठीक है, कुफर का है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई सही है, चल रहा है मामला, इसको कहते हैं राजी होना। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि एक साइड पर यानी ईमान भी है दिल के अंदर और कुफर के साथ जो है वो राजी भी है, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर कुफर के साथ रजामंदी का मूड चल रहा है, मूड मूड कहते हैं ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं लेकिन आपके मूड से पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर रजामंदी का मूड चल रहा है तो फिर ये किस किस्म का ईमान है, ये कहाँ का ईमान है, कौन सा ईमान है? ठीक है, तो एक तो हो गया ना बेजारी, तो बेजारी तो यानी बेर मिनिमम है कि भाई नहीं, ये मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं कुफर से खुश नहीं हूं, मैं कुफर से राजी नहीं हूं। ठीक है, आज क्यों कोई मसला नहीं है कि खानदानों के अंदर कोई एथियस्ट हो जाता है, कोई काफिर हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई मुर्तद हो जाता है, और कोई मसला ही नहीं होता किसी को, इसलिए कि हम हमें कोई मसला नहीं है, हमें ठीक है भाई, वो उसका उसका दीन है, उसका मामला है, और हमारा हमारा मामला है, उनका उनका मामला है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हालांकि ये आयत जो है वो मनसूख हो चुकी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये है ही नहीं, या तो मनसूख हो गई उलमा के नजदीक, ये मनसूख ही हो गई है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाला सिलसिला अब नहीं है, जैसे कुरान मजीद की और भी बहुत सारी आयात जो है वो मनसूख हो गई है। ठीक है, पहले आयत नाजिल हुई थी कि अगर तुम रोजा ना रख सको तो तुम फिदिया दे दो, हर बंदे के लिए ये ऑप्शन था, हर बंदे के लिए ऑप्शन था कि अगर तुम रमजान के अंदर रोजा ना रख सको तो तुम फिदिया दे दो, हर बंदे के लिए ऑप्शन था। ये आयत आज भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, लेकिन सुन्नत से हमें क्या पता चलता है कि ये आयत मनसूख हो गई, बल्कि सुन्नत से क्या, कुरान मजीद ही की दूसरी आयत से पता चल जाता है कि अब जो है ना ये हुक्म नहीं है, बल्कि जो भी रमजान का शहर, वमन शहिद मिनकुम फलयसुम, है यही है ना आयत, कि जिसको भी रमजान का महीना मिलेगा तो उसको रोजा रखना है। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि इस किस्म की बीमारी हो, इस किस्म का सफर हो, तो फिर रोजा आप छोड़ सकते हैं वरना नहीं, तो इसको मनसूख होना कहते हैं। और ये कैसे पता चलता है, ये या तो कुरान की तफसीरी उलूम से पता चलता है या हदीस मुबारका की तफसीर से पता चलता है कि भाई ये आयत जो है वो मनसूख हो चुकी है। खैर के बात ये हो रही थी कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है ना, कि या तो ये मनसूख हो चुकी है या ये कि इसका मतलब ये है ही नहीं कि आप किसी दूसरे के दीन पर राजी हो जाए। ठीक है, राजी होने का बिल्कुल भी मतलब यहां से नहीं है। तो आज के दौर में हम राजी हैं भाई, कोई मसला है किसी को कुछ नहीं, तो चल रहा है मामला बस। तो इसकी मकसद ये है कि हम हमारा दीन ही जो है ना वो बहुत कच्चा हो चुका है, बहुत कच्चा हो चुका है। उसी तरीके से जो हजरत ने यहाँ पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया, बुग़्ज़ व अदावत की दीवार। तो बुग़्ज़ व अदावत यानी ये बेजारी से एक बढ़ा हुआ दर्जा है। एक तो हो गया ना कि आप किसी से राजी नहीं है, किसी से कंफर्टेबल नहीं है, डिसकंफर्ट, जैसे यहाँ पे नौजवान साथी ने लिखा डिसकंफर्ट, ठीक है। तो ये कम से कम इतना तो होना जरूरी है कुफर के लिए। लेकिन एक होता है दिल के अंदर शदीद नफरत भी, बुग़्ज़ और अदावत उसको कहते हैं, दुश्मनी, ठीक है। तो ये जो दुश्मनी वाला दर्जा है कुफर के लिए दिल में होना, कुफर के लिए, काफिर इंसान के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि इंसान तो फिर अल्लाह का बंदा है ना, वो तौबा कर लेगा तो हमसे भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ तो बुग़्ज़ और अदावत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके कुफर के साथ, उसके अकायद के साथ, यानी जो अकीदा उसने रखा हुआ है, तो उसके साथ तो बुग़्ज़ और अदावत करनी है, ठीक है। लेकिन ये किसके दिल में होगा? ये उसी के दिल में होगा जिसके दिल में ईमान की मोहब्बत भी शदीद होगी। जिसके दिल में ईमान की मोहब्बत शदीद होगी, नेचुरली ऑटोमेटिकली कुफर की उसके दिल में अदावत होगी, बुग़्ज़ होगा, ठीक है। तो ये फिर अल्लाह की मोहब्बत या ईमान की मोहब्बत का मतलब भी यही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ना, तो वो फिर जितना मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएंगे उसी उतना ही कुफर की बुग़्ज़ और अदावत के अंदर भी इंसान आगे बढ़ता चला जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। लेकिन कम अज कम बेजारी तो होना, कम अज कम बेजारी तो, जब बेजारी नहीं होती तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि फिर हमारा ईमान भी खतरे में ही होता है, और फिर अगले नस्ल का ईमान तो खत्म ही हो जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। क्योंकि इस कैफियत के साथ अब आप किसी की ईमानी तरबियत कर ही नहीं सकते कि आपको कुफर के साथ बेजारी ही ना हो। अब आप अपनी औलाद की ईमानी तरबियत नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन्होंने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं कि मेरा बच्चा बहुत रोता है, 15 मंथ्स का है बट रोता बहुत है। सेकेंड, मेरी सास बहुत बीमार रहती है, कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। आप सास को भी सेहत अता फरमा दें, आपके बच्चे को भी जो है वो सेहत अता फरमा दें, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि ये दो कौमी नजरिए हैं जिसने पाकिस्तान बनवाया, ठीक है। पाकिस्तान किस बुनियाद पर बनाए? दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना है, ठीक है। अल्लाह ने बनाया है, कायदे आदम ने नहीं बनाया, ठीक है। मोहम्मद अली जिना नहीं बना, ये अल्लाह ने बनाया, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या क्यों बनवाया भाई? दो कौमी नजरिए के बुनियाद पर बनवाया है, उसके लिए इस्तेमाल किया है जिसको भी अल्लाह ने चाहे इस्तेमाल किया, लेकिन बनवाया अल्लाह नहीं है। तो मालूम हुआ कि दो कौमी नजरिया नजरिए हैं, या दो कौमी नजरिया है जिसने पाकिस्तान बनवाया है। उसका ऐलान सबसे पहले हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तमाम उम्मतों ने हस्ब हिदायत यही तरीका इख्तियार किया। जैसे सारी उम्मतों को हिदायत की गई थी कि भाई ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग कौम है, ठीक है। और आम तौर पर मुसलमानों में कौमियत इस्लाम मारूफ हो गई, ठीक है। यानी हिदायत की गई और फिर मुसलमानों ने इस हिदायत को एडॉप्ट कर लिया और फिर ये मुसलमानों में मारूफ हो गई, कौमियत इस्लामी, ठीक है। यहाँ पे नौजवान साथी ने जो है वो सूरह हुजरात की आयत भी नकल फरमा दी कि वह हब्बा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम फिल कुलूबिकुम नहीं फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, ठीक है। तो ये तो सहाबा के ईमान की कैफियत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि जो उनके लिए अल्लाह ताला ने महबूब बना दिया ईमान को, और कुफर को और फिस्क को और इसयान को मकरूह बना दिया। ये सूरह हजरात की आयत यहाँ पे मर्दों में जो कि नकल की कर दी थी, वैसे आपके सामने सबके सामने पढ़ दी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु दूसरी उम्मतों ने हस्ब हिदायत यही तरीका इख्तियार कर लिया, ठीक है। यानी उन्होंने हुज्जतें नहीं बनाई कि नहीं ये कैसे हो सकता है, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारे हम वतन जो हैं वो उनके साथ हम कैसे जिंदगी गुजारा करेंगे, ऐसे उन्होंने हुज्जतें नहीं बनाई बल्कि उन्होंने उसको कबूल कर लिया। और फिर ये क्या हुआ कि आम तौर पर मुसलमानों में, यानी उमूमी तौर पर, ये कॉमन हो गई है बात ना कि कौमियत इस्लामी क्या चीज होती है। हज्जतुल विदा के सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफिला मिला, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में काफिला मिला जो वो भी हज पे जा रहे थे। आप ने उनसे पूछा कि तुम किस कौम से हो, ठीक है, किस कौम से हो, यानी नबी अलैहिस्सलाम के पूछने का मकसद क्या था कि तुम किस कबीले से हो, ठीक है, क्योंकि अरब के अंदर कबाइल थे ना, ठीक है, कबाइली निज़ाम था, और आज भी अल्लाह करे होता तो फिर हम काफ़ी बेहतर हालत में होते, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वो कबाइली निज़ाम ख़त्म कर दिया है, जिसकी हम जो है वो फायदे फायदे तो क्या मिलने थे उसके, बस ख़त्म हो गया है ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कबीला पूछने के लिए सवाल किया कि तुम किस कौम से हो, ठीक है, तो जवाब दिया उन लोगों ने, क्या जवाब दिया, नहनु कौमु मुस्लिमून, कि हम तो मुसलमानों की कौम से हैं, ठीक है, हम मुसलमानों की कौम से हैं। इसमें अरब के साबिका दस्तूर के मुताबिक किसी कबीले या खानदान का नाम लेने की बजाय मुस्लिमून कहकर उस हकीकी कौमियत को बतला दिया जो दुनिया से लेकर आखिरत तक चलने वाली है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों सवाल पूछा, ठीक है, क्यों क्यों सवाल पूछा है, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि भाई जब मुसलमान कौमियत होनी चाहिए थी तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को ये सवाल पूछने की क्या जरूरत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने देख लिया होगा, देख करके अंदाजा हो जाता है कि हज के लिए जा रहे हैं, या तो एहराम बांधा हुआ होगा उन लोगों ने, तो फिर तो पक्का पता चल गया कि हज के लिए जा रहे हैं, या ये इस अंदाज में जा रहे होते हैं, हदी के जानवर लेकर के जा रहे होते हैं, कुर्बानी के जानवर साथ लेकर के आते थे लोग, अब तो वहां मिलते हैं ना, पहले लोग साथ लेकर के आते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो ये बात पता थी कि ये मुसलमान कौम से लोग हैं, तो वाई वाज नबी अलैहिस्सलाम आस्किंग, क्यों आप उनसे पूछ रहे थे कि तुम किस कौम से हो, क्या ये सवाल जो है ये नाउज बिल्ला हमारी समझ की खातिर तालिब इल्माना तौर पर, ठीक है, कि ये सवाल जो है वो एक गलत सवाल नहीं है, कि दिस इज लाइक इनवोकिंग इन नॉन मुस्लिम कौमियत के, भैया आप अगले बंदे को गोया के कह रहे हैं कि तुम अपनी कौम बताओ, हालांकि कौम तो मुसलमान है, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो इसकी यानी प्रोमोशन करनी चाहिए थी कि ये तो मुसलमान कौम है, तो फिर इस किस्म का सवाल क्यों किया, ठीक है, यानी मर्दों में भी माशाल्लाह खवातीन में तो बिल्कुल सही जवाब आ गया है, लेकिन मर्दों में अगर आ जाए तो टू टेस्ट देम नहीं, अच्छा सॉरी मैंने देखा भी नहीं, टू आइडेंटिफाई देम एज अल्लाह हैज मेंशन इन द कुरान, एब्सोल्यूट, ठीक है, खवातीन में भी बिल्कुल ये जवाब आया, लितारफू लितारफू, क्यों, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद क्लियर कर दिया कि या अय्युहन्नास इन्ना जालनाकुम मिन ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, हमने तुम्हारे शुरूब और कबाइल, ठीक है, तुम्हारे जो छोटे छोटे ग्रोह हैं या उससे बड़े जो तुम्हारे कबाइल हैं, ये हमने किस लिए बनाए हैं, लितारफू, तारुफ के लिए, ठीक है, तुम्हारी बस ये एक आपस में डिफ्रेंसिएशन के भाई अच्छा तुम इस खानदान से ताल्लुक, क्योंकि कबाइल जो है ये बेसिकली खानदान ही होते हैं, ठीक है ना, ये खानदान ही है, थोड़े से बड़े हो जाए ना खानदान तो फिर उसको कबीला कह देते हैं, जैसे हमारे यहाँ उसको अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी अब हम अंग्रेज बन चुके हैं, तो इस वजह से हम उसको कम्युनिटी कहते हैं, मेमनों की कम्युनिटी होती है वो फलानी का, वहां पे ज्यादा कम्युनिटी सिस्टम अभी भी है हमारे मेमन, गुजराती मेमन हजरात के अंदर, ठीक है, तो ये उखा क्या उखाई मेमन कम्युनिटी है, तो ये सिंधी मेमन कम्युनिटी है, तो ये फर्क, तो वो कबीला है असल में, प्रॉपर उर्दू या अरबी का लफ्ज है वो कबीला है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये जो बनाया ना सिस्टम, ये तारुफ के लिए बनाया, तो ये तारुफ की नीयत से ये बात करना गलत नहीं है कि भाई आप कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तारुफ की नीयत से बिल्कुल भी मसला नहीं है इसके अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तारुफ की नीयत से सवाल किया, लेकिन मुसलमानों के उन लोगों के
दिल और दिमाग के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात ऐसे यानी छा चुकी थी, ऐसे उन्होंने कबूल कर लिया था नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को कि अपने नॉर्म से हट करके उन्होंने जवाब दिया कि नहनु कौम मुस्लिमून, ऐसे मानने वाले लोग थे। ठीक है, पहले तो बिल्कुल किसी की नहीं मानते थे, लेकिन जब मानी तो फिर ऐसे मानी कि सवाल के जवाब ही जो है ना वो अपने मामूल से हट करके जवाब दिया। ठीक है, तो ये दीन तो इसीलिए है भाई कि भाई हम माने, दीन को माने। ठीक है, अगर नहीं, हमारी हमारी पुरानी जो है वो खत्म ही होकर के दे रही है, तो फिर हमने क्या क्या पाया इस दिन से ना। तो फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जगह अपने बाप से खिताब के वक्त तो बरादरी की निस्बत उनकी तरफ करके अपनी बेजारी का ऐलान फरमाया, और जिस जगह कौम ने कौम से अपनी बेजारी और कता ताल्लुकी का ऐलान करना था वहां अपनी तरफ मंसूब करके खिताब किया। ठीक है, यानी पहले तो बेजारी का, तो फिर कौम का, मैं अपने बाप से क्या कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम, तुम्हारी कौम। ठीक है, हालांकि कौम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी, लेकिन अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया ना कि मैं इस कौम का फर्द नहीं हूं जो कि शिर्क करते हैं। और जिस जगह कौम से अपनी बेजारी और कता ताल्लुकी का ऐलान करना था वहां अपनी तरफ मंसूब करके खिताब किया। ठीक है, कि मैं जो हूं ना वो क्या कहा था कि या कौमी इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ए मेरी कौम मैं तो बरी हूं, मैं आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस शिर्किया रिलीजन। ठीक है, तो देखें क्या मतलब हमारे लिए इसमें क्या टेक होम पॉइंट है, क्या इसके अंदर हमारे लिए उसूल मिलता है या सबक मिलता है कि वी यानी जब हम दावत का काम कर रही हैं, जब हम जो है वो अगले बंदे से बात कर रहे हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो कितना एहतियात के साथ और कितना सोच समझ के साथ करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम कर ना पाए ये हमारा हमारी गलती है या हमारी कम इल्मी या हमारी कम जो है वो फहमी है, लेकिन कम से कम उसूल को हम एक्सेप्ट तो करें ना कि भाई बहुत ज्यादा हमें यानी सोच समझ करके बात करनी चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना अपना अपनी तवानाई खर्च करनी चाहिए, अपने अपना अपनी अकल जो है वो यहाँ पे फोकस करनी चाहिए कि जी मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ही बात कर रहे थे, लेकिन एक मौके पर दूसरा अस्लूब इख्तियार कर रहे हैं, दूसरा अंदाजे बयान इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे मौके पर दूसरा अंदाजे बयान इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऑडियंस इज द सेम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, तो इस वजह से फिर अपने अल्फाज को चेंज किया। ठीक है, तो कमाल एहतियात भी और कमाल फिक्र भी, खाली एहतियात नहीं बल्कि कमाल फिक्र भी इसके अंदर नजर आती है, कितना फिक्र थी उनको अपने कौम की। ठीक है, और अपनी दावत को अच्छे अंदाज में पहुंचाने की कितनी फिक्र थी उनको इस बात की ना। ठीक है, अच्छा जहां तक दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान बनाने बनाने की जो बात है सारी की सारी, तो भाई इसमें जो है ना फिर हमारे जो उलमाए हक हैं, हमारे अकाबरीन हैं और हमारे सर के ताज हैं और हमारी आंखों की ठंडक हैं, उन्हीं उलमा और उन्हीं अकाबरीन के दरमियान जो है वो इल्मी इख्तलाफ या इज्तिहादी इख्तलाफ हुआ। ठीक है, हमारे उलमाए हक में से, हम उलमाए हक के लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो अहले बिदत के जो उलमा हैं उनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, जो बिदात और खराफात के अंदर लग गए, चाहे वो इल्मी बिदत के अंदर मुबतला हो गए हम उनकी भी बात नहीं कर रहे, और जो अमली बिदत के अंदर मुबतला हो गए हम उनकी भी बात नहीं कर रहे। किसी किस्म के भी बिदत में जो लोग मुबतला हुए हम उनकी बात नहीं कर रहे, बल्कि जो अहले सुन्ना वल जमात के उलमा थे हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी जैसे उन्होंने लिख दिया अहले सुन्ना वल जमात अहनाफ उलमाए दियोबंद। ठीक है, इंडिया के अंदर एक आम टर्म है उलमाए दियोबंद के नाम से, जिसमें दियोबंद के अलावा भी बहुत सारे मदारस आ जाते हैं, जैसे मजाहिर उलूम, ठीक है, मदरसा शाही मुरादाबाद। ठीक है, ये दियोबंद के बाद बनने वाले मदरसे नहीं है बल्कि देवबंद के साथ बनने वाले मदारस, लेकिन ये भी देवबंदी अहले यानी مسلک یا دیوبندی فکر ہی کے مدارس کے ساتھ، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا دیوبند کے ساتھ کوئی فزیکل تعلق نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ان کے علاوہ بھی ہیں ایسے مدارس، ٹھیک ہے. تو یہ جو علماء حق ہے نا، جو کہ بدعات کے اندر نہیں پڑھے، نہ علمی بدعت کے اندر پڑھے کہ نہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے، حالانکہ بھائی شریعت و سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، لیکن آپ خامخواہ جو ہے وہ حرام اور شرک کے فتوے لگائے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو امت نے کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ جو ہے وہ ایک نئی چیز 20ویں صدی کے اندر آ کر کے ایجاد کر رہے ہیں، تو بھائی وہ بھی بظاہر جو ہے وہ بڑا سو کالڈ جو ہے وہ آپ کو توحید نظر آتی ہے، سو کالڈ توحید نظر آتی ہے، لیکن وہ سو کالڈ توحید جو ہے نا وہ اصل میں بدعت کی شکل، جو آپ نے اپنی توحید بنا لی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. اسی طریقے سے مداروں کے اوپر جو ہے وہ جا کر کے تماشے کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بدعت ہوتی ہے. تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کی بات کر رہے ہیں. تو ان میں جو ہے وہ علمی اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف ہوا، ایک نے کہا کہ نہیں پاکستان بننا چاہیے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں پاکستان بننا بہتر نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ دین کی محنت کرنی چاہیے، اسی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ساتھ رہ کر کے جو ہے وہ دین کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ ہندو جو جو نان مسلم، بلکہ خالی ہندو تو نہیں رہتا نا انڈیا کے اندر، جو نان مسلم میجورٹی ہے یہاں پر، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ کر کے نا پھر واپس دین اسلام کی ویسی ہی جو ہے وہ شان کو بحال کرنے کی محنت کرنی چاہیے جیسے کہ پہلے تھی، انگریزوں کے آنے سے پہلے تھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ دو گروہ بن گئے علماء میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی کوئی بہت برائی والی بات بھی نہیں. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی یہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اسی وقت جو ہے وہ اہل علم کے دو گروہ بن گئے اسی وقت، ٹھیک ہے. یہ کوئی برائی نہیں ہے، علمی اختلاف ہونا یہ کبھی بھی برائی نہیں تھی، اور کبھی بھی نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگی، لیکن برائی اس وقت بنتی ہے جب تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہوتی ہے، صرف علم ہوتا ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہوئی ہوتی، اس وجہ سے پھر وہ لڑائی دنگا فساد کا سبب بن جاتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ علمی اختلاف کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاقی تربیت کے نہ ہونے سے. الحمدللہ ہمارے ان علماء کے دو گروپس جو بنے، ان کے اندر اخلاقی مسئلہ تھا ہی نہیں، ان کے درمیان اخلاقی مسئلہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ فساد کا سبب نہیں بنا، یہ فساد کا سبب بالکل بھی نہیں بنا، ٹھیک ہے. تو بہرحال، تو اب جو پاکستان کے حق میں تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ، اور مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ خود، ٹھیک ہے، صاحب اہل قرآن، صاحب معرف القرآن، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے دوسرے بھی علماء تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے سر کے تاج، اور بلکہ ہم ذاتی طور پر اگر اپنی بات کریں تو ہم تو اسی موقف کو زیادہ صحیح سمجھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے حضرت بھی ایسے ہی تھے، اور ہمارے اور بھی بہت سارے علماء اسی کے قائل ہیں، لیکن دوسری طرف بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، حضرت حسین احمد مدری رحمتہ اللہ علیہ، او ہو، اتنے بڑے اکابرین میں سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بالکل پائے کے، بالکل برابر ان کا تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں دونوں، ایک ہی لیول کے ہیں، وہ بالکل پاکستان کے حق میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ جو کہ پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اختلاف ہوا نا، تو دونوں طرف جو ہے وہ دلائل تھے، اور دونوں جو ہے وہ ہم ہمارے نزدیک دونوں حق پر ہیں، لیکن یہ والے جو ہیں وہ ہمارے نزدیک زیادہ حق پر ہیں، باقیوں کے نزدیک وہ زیادہ حق پر ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ دونوں حق پر ہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل چاروں بلکہ حق پر ہیں، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، اور جنہوں نے علم حاصل کیا وہ علمی اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی احناف جو ہیں وہ زیادہ زیادہ حق پر ہیں، وہ ان سے ایک درجہ کم حق پر ہیں، لیکن حق پہ دونوں ہیں کیونکہ دونوں کے دلائل موجود ہیں، علمی دلائل، ٹھیک ہے. تو یہ ویسا ہی مسئلہ ہے بس، اور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی یہ کہ باقی تو اس کے اوپر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ ہم نہیں شروع کرنا چاہتے، لیکن یہ دو قومی نظریہ کے خلاف کوئی بھی نہیں تھا، یہ غلط ہے کہ نہیں وہ جو انڈیا کے حق میں تھے یا ایک متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے، وہ دو قومی نظریہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے بندے، اگر اس کو وہ صحیح نہیں سمجھیں گے تو پھر वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर उसको वो सही नहीं समझेंगे। आपकी अकल की कमी है, आपके इल्म की कमी है कि आप समझते हैं कि वो डोपामिन नजरिए के खिलाफ थे। वो बिल्कुल डोपामिन नजरिए के खिलाफ हो ही नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं इस्लाम का एक फॉर्म नहीं है, मुसलमान एक फॉर्म नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान सिख और यहूदी और सारे के सारे मिलकर के एक फॉर्म बनते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें, अगर किसी के दिमाग में आई हुई है तो उसको निकाल देना चाहिए। अच्छा, तो बहरहाल पाकिस्तान जैसे कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ जो है वो पंजाब या ये क्या कहते हैं वेस्टर्न पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले जो है वो सरहद का सूबा कहलाता था, ये पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में रहने वालों के लिए नहीं बनाया गया था। बल्कि अगर आप तहरीक पाकिस्तान की या तहरीक आज़ादी की तफसील में जाकर के देखें तो शायद कुछ लोग नाराज ना हो जाए ये बात सुनकर के, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े लोग भी कहते हैं वाली बात कि भाई जितनी उसके लिए कुर्बानियां और जितनी उसके लिए जद्दोजहदें जो हैं वो आज जो हिंदुस्तान है वहां के रहने वालों ने करी, उतनी तो यहाँ के रहने वालों ने करी भी नहीं, ठीक है। तो किन्होंने करी जो कि यहाँ पे रहते ही नहीं थे और जिनको पता भी नहीं था कि वो पता नहीं कभी जिंदगी में पाकिस्तान को देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर लीडर्स तो वहां के नजर आते हैं, उन्होंने क्यों करी भाई, जबकि पाकिस्तान तो इधर बनना था या उधर बनना था जहां पे वो ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि ये इस्लाम के लिए बन रहा था, ये एक खास जगह पे रहने वाले लोगों के लिए नहीं बन रहा था, ये तो दीने इस्लाम के लिए बन रहा था ना, ठीक है। अब जाहिर है मुनाफिक तो हर जगह होते हैं, हर वक्त में होते हैं, हर दौर में होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब मुनाफिक थे तो 20वीं सदी में मुनाफिक क्यों नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो मुनाफिक जो है फिर वो नुकसान पहुंचाने की उसमें रहते हैं। तो अब उन्होंने जो है वो यही करी के जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाना चाहते थे उन्होंने जो है वो अब खूब मेहनत करी, ठीक है, कि बन तो जाए लेकिन आगे चले ना सही इस्लाम के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने जो करा तो फिर वो हम उसके नतायज देख रहे हैं और उसकी वजह भी यही बनी, वो क्यों क्यों इतने कामयाब हो गए, वो मुनाफिकीन क्यों इतने कामयाब हो गए अपनी साजिश के अंदर कि बेशक ये मुसलमान ये इस्लाम के नाम पे बन तो रहा है लेकिन इसमें इस्लाम आ ना सके, वो कामयाब क्यों हो गए अपने इस बाहिर कामयाब हो गए या कम से कम जाहिरी तौर पर अभी तक कामयाब नजर आते हैं, वो क्यों कामयाब हो गए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि जो लोग इस्लाम के नाम पर मुसलमान बन जो लोग इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना रहे थे ना, ठीक है, उनकी वाजह अक्सरियत जो है उनको खुद इस्लाम का नहीं पता था कि ये क्या चीज होती है, उनको खुद इस्लाम का पता नहीं था कि ये क्या चीज होती है और वो सीखने के लिए तैयार भी नहीं थे। नारे मारना तो बहुत आसान होता है ना, ठीक है, हत्ता के जहां क्या कहते हैं सर कटा देना भी निस्बतन आसान होता है लेकिन सर झुकाना सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो वो सर कटाने के लिए तो तैयार हो गए थे लेकिन सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, सिवाय जो बड़े अकाबरीन उलमाए कराम थे अहले हक थे उनको तो अच्छी तरह से पता था कि इस्लाम क्या होता है और क्या हमसे डिमांड करता है, ठीक है, लेकिन जो नीचे के हमारे तबके के लोग थे ना वो बिल्कुल भी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी जान की कुर्बानी नहीं नफ्स की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थे। अब जाहिर है जब आप ऐसा इस्लाम चाहेंगे जो कि कुफर से बेजारी के बगैर ही हो, राइट, और जो कि जिसमें कि हमारी अकल जो है वो सबसे अहम चीज हो, ठीक है, तो फिर ऐसे इस्लाम के तो फिर कोई नहीं है ना भाई, उसकी तो कोई अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी वारंटी नहीं होती इस ऐसे इस्लाम को, ठीक है। तो ये चक्कर सारा का सारा हो गया, अल्लाह तौबा की तौफीक अदा फरमाने वाला है, यकीनन करेगा और आगे इंशाल्लाह दीन इस्लाम तो होगा गालिब दुनिया के, वो पाकिस्तान में हो ना हो, बांग्लादेश में हो ना हो, हिंदुस्तान में हो ना हो, इससे कोई ये कोई जरूरी नहीं है। हदीस से चंद बातें साबित होती हैं कि हाँ इस हफ्ते के अंदर कुछ होगा, ठीक है, लेकिन कब होगा कैसे होगा अल्लाह आलम, लेकिन एक बात हमें पता है कि तौबा के बगैर अल्लाह ताला की मदद नहीं आती है, तौबा कर लेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, ठीक है, बस तौबा की मेहनत है। तो हमारे उलमा भी जो है ना फिर वो लगे हुए हैं अलहमदुल्ला, मशायख उलमा भी उनका करने का काम भी है। तो बहरहाल आगे पढ़ते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरादरी और उनके बाप दोहरे शिर्क में मुब्तला थे कि बुतों की भी परस्तिश करते थे और सितारों की भी, यानी एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के उन्होंने अपने इलाह बनाए हुए थे, और दूसरे इलाह जो है बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी, यानी एक तो बिल्कुल ही यानी पस्त जमीन के अर्थ के बने हुए, ठीक है, और दूसरे जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज के बने हुए हैं जो कि सैयारों और सितारों वाली मखलूक है। तो इस एक्सट्रीम और उस एक्सट्रीम, ये इन दोनों एक्सट्रीम्स को जो है ना उन्होंने अपने खुदा बनाया हुआ था। तो सितारों की भी लोग परस्तिश करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दोनों मसलों पर अपने बाप और अपनी कौम से मुनाजरा किया, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज इल्मी बिदत, तो मैंने तो समझा दिया है, उम्मीद है कि आपने फिर जवाब पा लिया होगा उसके अंदर से। अच्छा एक मिनट, तो अच्छा एक मिनट, इतना लंबा सा मैसेज आया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्योंकि असल में जिन्होंने ही मैसेज किया उन्होंने ही फिर वो अपने बच्चे के रोने और सास की बीमारी का भी मैसेज किया था। भाई वो दरसो कुरान की क्लास हो रही है यहाँ पे, तो आप अपने, खैर क्या लिखा उन्होंने, कल के रमजान ट्रांसमिशन की वीडियो सामने आई, सामने से गुजरी। रमजान ट्रांसमिशन आप देख नहीं, नहीं देखा करें रमजान ट्रांसमिशन, ठीक है। टीवी तो वैसे ही ईमान की टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, वो तो घर में वैसे भी नहीं होना चाहिए। चह जाए के रमजान के अंदर जो है वो आप टीवी खोल करके जो है वो कोई रमजान का प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। हरगिज़ तौबा करने की जरूरत है इस वाले गुनाह से, ठीक है। रमजान की बेहरमती जो है ना, ये बेहरमती में आता है और इसके ऊपर बहुत बड़ा आजाब रमजान की बेहरमती के ऊपर, टीवी को बंद करें, घर से निकालने की मेहनत करें। अच्छा बहरहाल पढ़ तो आपका मैसेज हम रहे हैं। आप तो क्या हुआ कि जिसमें वजायफ के सेगमेंट में एक लड़की ने कॉल करके पूछा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अच्छा ये भाई आपका क्लास के बाद ही पढ़ना पड़ेगा, आपको मैसेज कॉपी कर लेते हैं, तो क्या करें, कॉपी पेस्ट करने की तो कोई जगह ही नहीं। सेफ पढ़ लिया आपको, मतलब हम क्लास में पढ़ने के काबिल नहीं है वैसे, मेरे काम नहीं है। एनीवे देखते हैं बाद में, अगर कोई होगी इस पर बात करनी है तो कल करते हैं इंशाल्लाह। तो हज़रत मुशरफी अहमदुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरादरी और उनके बाप दोहरे शिर्क में मुब्तला थे, कि बुतों की भी परस्तिश करते थे और सितारों की भी, इसीलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दोनों मसलों पर अपने बाप और अपनी कौम से मुनाजरा किया। पहले बुत परस्ती का वलालत व गुमराही होना जिक्र फरमाया, अगली आयत में सितारों का काबिल इबादत ना होना बयान फरमाया, अगली आयत में सितारों का काबिल इबादत ना होना बयान फरमाया, और इससे पहले एक आयत में बतौर तमहीद के हक तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास शान और इल्म व बसीरत में आला मुकाम का जिक्र इस तरह से फरमाया, वकदालिक नूरी इब्राहिम मलकूत السماوات والارض وليكون من الموقنين, यानी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन की मखलूकात को इस तरह से दिखला दिया कि उनको सब चीजों की हकीकत वाशगाफ तौर पर मालूम हो जाए, बिल्कुल खुल करके उनको हकीकत मालूम हो जाए चीजों की और उनका यकीन मुकम्मल हो जाए। इसी का नतीजा था जो बाद की आयात में एक अजीब तरह के मुनाजरे की शक्ल में इस तरह से मजकूर है, ठीक है। यानी जिसको साइंस कहा जाता है, ये साइंस एक टर्म है अंग्रेजी के ना, ये एक एक लफ्ज कॉइन हो गया एक लैंग्वेज के अंदर साइंस, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इस लफ्ज की, इसकी हकीकत जो है पर वो साइंटिफिक मेथड्स की, जो अब आप पढ़े हैं कि भी साइंटिफिक मेथड्स क्या चीज है, तो सबसे पहला उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, बात चीज को देखना और तवज्जो के साथ देखना, गौर के साथ देखना, और बल्कि जितना गहराई में जा करके देख सकते हो उतना ज्यादा गहराई में जा करके देख, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी दूसरे मेथड्स होते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन करना और फिर जो है वो उसको एनालिसिस करना, फिर उसके ऊपर कोई जो है वो रिपोर्ट बनाना, ये सब साइंटिफिक मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जैसे पीछे भी बात हुई थी कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम को براق پر بٹھا کر کے اور پھر جو ہے وہ رف رف کے اوپر بٹھا کر کے زمین کی بھی چیزیں دکھلائیں اور آسمان کی بھی چیزیں دکھلائیں اور جنت اور جہنم میں دکھلایا، تو اس سے کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کا یقین جو ہے وہ بڑھ گیا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مناظر اور یہ حقیقتیں دکھلا دکھلا کر کے ان کا یقین جو ہے وہ بڑھا دیا. اچھا، یقین بڑھانے کے لیے کیا کر دیے کہ اسکا تعلق کس چیز سے ہوا؟ پھر یقین کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوا؟ ٹھیک ہے، جلدی سے اگر آپ کوئی جواب دے دیں کہ بھائی کیسے، کیوں یقین، کیسے یقین بڑھ گیا ابراہیم علیہ السلام کا؟ دکھلا دیا تو پھر ہمیں تو نہیں دکھلایا، پھر ہمارا یقین کیسے بڑھے گا پھر؟ ٹھیک، جواب اس کا آپ سے چاہیے کہ ہمیں بھی تو یقین، اہل یقین بننا ہے نا. ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براق بھیج کر کے نہیں دکھا رہے، تو پھر یہ تو ہمارا پرابلم تو نہ ہوا نا کہ اللہ نے براق نہ بھیجا ہمیں، ہمارے لیے جو ہے وہ رف رف کی سواری نہ بھیجی، تو ہمارا یقین کیسے بڑھے گا بھائی؟ تو یقین کیسے بڑھتا ہے؟ انہوں نے لکھا مشاہدے سے بڑھتا ہے، انہوں نے لکھا غور و فکر سے بڑھتا ہے، یعنی مراقبہ کرنا شروع ہو جائے تو آپ کا یقین بڑھ جائے گا. اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے یقین بڑھتا ہے. محبت کیسے بڑھتی ہے پھر؟ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ انہوں نے اعتماد کیا تو اللہ نے ان کو مشاہدہ کروایا. اعتماد تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں یقین کیسے بڑھتا ہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مشاہدہ کیوں کروایا اللہ نے. ٹھیک ہے، اور ان کو نبی بنایا تھا اس لیے زیادہ درجے کا مشاہدہ تھا، زیادہ درجے کا مشاہدہ. بھائی یہ پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جو ابھی سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا. ہم بندگی کریں آگے اللہ مشاہدہ کروائیں گے. اللہ کی قدرت کو پہچاننا، فرائض کو پورا کرنا، ہمیں خبر پر نظر سے زیادہ یقین ہو، یقین ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک ہماری حالت ہے. تو یقین کیسے بڑھتا ہے؟ مشاہدہ والا جواب بالکل ٹھیک تھا ویسے، ٹھیک ہے، لیکن مشاہدہ اتنا مشکل لفظ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مشاہدہ. تو اس وجہ سے آسان والا لفظ استعمال کرنا نا. ایمان اور یقین الگ ہے، کیونکہ ایمان بنا دیکھے پہ ہوتا ہے، ایمان پہ محنت سے، ایمان پہ. چلو جی، تبلیغی جماعت والی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سا جواب دے دیا. ایمان پہ محنت کرنے سے یقین بنتا ہے، ہم تو یہاں پہ آگے کی بات کر رہے ہیں کیسے محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا قرآن میں بتایا ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا، علم حاصل کر کے. اگزیکٹلی بھائی، سادہ سا ایک لفظ تھا، بہت ہی آسان ترین لفظ تھا، علم حاصل کر کے یقین بنتا. ٹھیک ہے، علم حاصل کر کے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دکھایا تو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ سیر و تفریح کروانا. ایک تو ہوتا ہے نا سیر و تفریح کرنا، انٹرٹینمنٹ. اس وجہ سے انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے بھی تو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں نا چیزوں کو. ٹھیک ہے نا، اور انٹرٹینمنٹ کے دوران جو آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ مشاہدہ کہہ دیں. اسی وجہ سے میں مشاہدے کے لفظ سے اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، مشاہدے کا لفظ جو ہے نا یہ کلیئر نہیں کرتا بات کو، کہ مشاہدہ تو سیر و تفریح کرنے والے کو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو انٹرٹینمنٹ کی نیت سے جو ہے وہ کبھی کہیں جا رہا ہے، 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 تو اس کو بھی تو مشاہدہ مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن علم کی نیت سے، علم حاصل کرنا جس کی ایک نیت ہوتی ہے کہ آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اس سے پھر یقین بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر یقین نہیں بڑھتا. پہلی بات، علم کے بغیر یقین نہیں بڑھتا، جاہل انسان کا یقین نہیں، یہ بات یاد ہے. لیکن صرف علم سے بھی یقین نہیں بڑھتا، بلکہ علم بھی جو ہے نا وہ صحیح نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے تب یقین بڑھتا ہے. یا ان ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ علم جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے کہ جو مجھے علم حاصل کر کے پتا چلے گا، آئی ول سبمٹ ٹو اٹ، میں اس کو قبول بھی کروں، میں ضد نہیں کروں گا کہ ہاں علم تو حاصل ہو گیا لیکن میں نہ مانوں، میں نے نہیں مانی، میں نے جو ہے نا وہ اس علم کے مطابق جو ہے وہ اپنی سوچ کو بدلنا نہیں ہے، میں نے اپنے عمل کو بدلنا نہیں ہے. تو ایسا جو علم حاصل کیا جس میں نیت یہ تھی کہ نہیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، اس سے پھر یقین حاصل نہیں، اس سے علم یقین حاصل. ٹھیک ہے نا، ضد پہ، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور اپنی چلانی کی وجہ سے، اور اپنی عقل پرستی کی وجہ سے، شیخ کہہ رہے کہ ایک کام کر لو، نہیں میں نے تو بس جو میں نے سوچا تھا بس وہی ٹھیک ہے، بس یا تو میری چلے گی یا کسی کی نہیں چلے گی. شیخ صاحب کو تو ہم نے ایسی تماشا بنایا ہوا ہے کہ بس نہیں، شیخ صاحب حضرت ہیں، حضرت ہیں، حضرت ہیں، ماننی میں نے اپنی اصل میں. رائٹ، मानी मैंने अपनी है, ये तमाशे नहीं चलते, इससे कभी यकीन हासिल नहीं होता। ठीक है, हमारा तो ये हाल है ना, हमने शेख 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 हजरत जी हजरत जी हजरत जी के नारे भी लगाने हैं, लेकिन माननी में हमने अपने हजरत की है जो कि हमारे अंदर छुपे हुए बैठे हुए हैं, जिनको हजरत नफ्स कहते हैं। एक हमारे भी तो हजरत है ना अंदर छुपे हुए, उसको हजरत नफ्स कहते हैं। बाकी ऊपर वाले हजरत जो हैं वो जो भी करते रहे, जो भी बोलते रहे, ठीक है। तो यकीन इल्म से हासिल होता है, लेकिन इल्म विद द राइट नीयत, सही नीयत के साथ, यानी उसके सामने सुपुर्दगी की नीयत भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसे यकीन हासिल हो, हमें अल्लाह ताला बुर्रात भेज करके कायनात की सैर नहीं करवाने वाले हैं। सही, तो ये बात हो गई कि भाई सब चीजों की हकीकत वाशगाफ तौर पर मालूम हो जाए और उनका यकीन मुकम्मल हो जाए। इसका नतीजा था जो बात की आयात में एक अजीब तरह के बना गए। ठीक है, देख उन्होंने ये इल्म हासिल कर लिया, अल्लाह ताला ने उनको दिखाया, फिर उन्होंने इसको मान भी दिया, अडॉप्ट भी कर लिया। ठीक है, तो उनके सामने ये बात भी खुल के आ गई ना, इतना तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाता है ना कि फिर जो है वो जो सूरज है उसकी रोशनी से जो है वो कैसे तसर्रुफ हो रहा होता है हमारी जिंदगी के अंदर, कायनात के अंदर। तसर्रुफ का मतलब बताया जाता है, चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से, इसको कहते हैं तसर्रुफ करना। तो सनलाइट से जो है वो तसर्रुफ होता है बाकायदा। अब तो वो सोलर सेल्स जो लगाए हुए हैं, तो सोलर सेल्स जो है वो पहले जो है वो बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है उनके ऊपर तो उनके अंदर तसर्रुफ आ जाता है, यानी उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। पहले एनर्जी नहीं थी उनके अंदर, अब सूरज की रोशनी से एनर्जी स्टोर हो गई, अब उस एनर्जी को जो है वो आप अपने घर का पंखा चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते। ठीक है, तो सनलाइट डस तसर्रुफ, ये इल्म इब्राहिम अलैहि सलाम को हासिल हो गया। ठीक है, तो सूरज जो है वो मुतसर्रिफ है, तसर्रुफ करने वाला है, चांद तसर्रुफ करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि उसकी रोशनी से जो है वो ये चीजें होती हैं आपके। ठीक है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे जो है वो बकायदा पानी खींचता है, जिसकी वजह से हाई टाइड आ जाता है, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो जो लिक्विड ब्लड जिसको कहते हैं वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो हिजामा जो है वो फुल मून की डेज के अंदर, फुल मून नाइट जो होती है उनके अंदर हिजामा कराने के लिए मेडिकल साइंस कहती है। ठीक है, और स्टार्स जो तसर्रुफ करते हैं, तो उसका एक शक्ल तो हमने डिस्कस कर ली थी कि हम अगर रास्ता भूल जाएं तो स्टार्स का तसर्रुफ ये होता है कि हमें रास्ता समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी होगा उसका तसर्रुफ, शायद हमें मालूम नहीं है कि और क्या क्या तसर्रुफ स्टार्स जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये सारी चीजें अल्लाह ने दिखाई, तो अब आगे जो मुनाजरा हो रहा था ना, अब उसके अंदर उसको इस्तेमाल किया, उस इल्म को इस्तेमाल किया। ठीक है, दलाइल के लिए इस्तेमाल किया अपने उस इल्म को। अच्छा, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या ये कहना मुनासिब होगा कि इल्म पर अमल करने से भी ईमान बढ़ेगा? इल्म पर अमल करने से भी ईमान बढ़ेगा? हाँ, मतलब एक ही बात है कि जो इल्म आपको मिला है, तो अगर वो एक तो ये हो गया ना कि इल्म को यानी गौर से यानी एडॉप्ट करने की नीयत से जो है वो हासिल करना, ठीक है, तो उससे जो है वो आपको यकीन हासिल होता है। लेकिन अगर इल्म जो है वो अवामिर और नवाही का इल्म है, ठीक है, यानी ये बेनिफिशियल चीज है और ये जो है वो हार्मफुल चीज है, तो अब उसके मुताबिक अपने अमल को ढालना कि बेनिफिशियल चीज को जो है वो अडॉप्ट कर लेना और हार्मफुल चीज से जो है वो बच के रहना, ये इल्म पर अमल कहलाना करना कहलाएगा। तो जैसे जैसे इंसान इल्म पर अमल करता है तो फिर उसका बेनिफिट बढ़ता जाता है ना, क्योंकि उसने बेनिफिशियल चीज को अडॉप्ट कर लिया। जल्बे मनफात इसी को तो कहते हैं, जल्बे मनफात, मनफात को उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, तो जाहिर है उसका फायदा बढ़ जाएगा ना। और जितना वो मुजर्रत से दूर भागेगा, दूर यानी रहेगा, बचेगा, जैसे जैसे हासिल होता रहेगा वैसे वैसे उसके जो है वो जल्बे मनफात बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वी हैव टू हैव सम यकीन टू इंक्रीज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे नौजवान साथी ने कि वी हैव टू हैव सम यकीन टू इंक्रीज इट, सम यकीन टू इंक्रीज इट। उसके लिए आप यकीन का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, वी हैव टू हैव सम कॉन्फिडेंस या सम क्या कहते हैं उसको, एतमाद को, क्या क्या लफ्ज है, एतमाद कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रस्ट, राइट? वी हैव टू हैव सम ट्रस्ट टू इंक्रीज आवर यकीन। अगर आपने ट्रस्ट ही नहीं किया तो फिर आपका यकीन नहीं होगा ना, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो माइक्रोस्कोप से जो है वो बैक्टीरिया को स्टडी किया, ठीक है ना? तो आपके सामने बैक्टीरिया की जो है वो सारी की सारी डिटेल्स सामने आ रही है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर ना हो, अगर आपका ट्रस्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर ना हो, आगे पता नहीं माइक्रोस्कोप जो है वो ठीक भी है कि नहीं है, पता नहीं जो है ना मुझे धोखा दे रहा है, असल में बैक्टीरिया में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ना वो मुझे दिखा रहा है इस तरीके से, असल में वो नहीं है, तो आपका माइक्रोस्कोप के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो, तो फिर जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के जरिए से, इससे आपका यकीन बढ़ेगा या इससे आप शक बढ़ेगा? इससे आपका शक बढ़ेगा, बदगुमानी बढ़ेगी। भाई आप क्यों माइक्रोस्कोप के साथ बदगुमान होकर बैठे हुए हैं, ठीक है? जब आपने ऑथेंटिक जेन्युइन स्टोर से एक अच्छी कंपनी का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप खरीद लिया था, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खाम खा बैठे हुए शक करे चले जा रहे हैं, पता नहीं मुझे सही दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहा, क्या ख्याल है? इसी तरीके से हम अपने मशाइख के साथ करते हैं, है ना? मशाइख जो है हमने ऑथेंटिक स्टोर से खरीदे मशाइख, सही है? यानी हमने जो है वो बाकायदा सनद याफ्ता उलमाए दियोबंद, अहले मसलक, अहले इल्म, अहले हक, उनके ट्रस्टेड जो है वो मशाइख हमने माशाल्लाह बैत कर लिए हमने मशाइख से, लेकिन ट्रस्ट हम मशाइख के ऊपर नहीं कर रहे, क्या पता नहीं सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं कहीं, हमें जो है वो गोलियां तो नहीं दे रहे हैं कहीं, ठीक है? अब मशाइख जो इल्म बता रहे हैं वो हमने नहीं मानना, तो फिर तो ये तो ट्रस्ट ना हो ना, तो फिर ये इल्म कैसे बढ़ेगा? जब इल्म नहीं बढ़ेगा तो यकीन कैसे बढ़ेगा? इसके ऊपर मुझे याद आता है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी याद आ रहा था कि हमारा मशाइख के साथ जो रवैया होता है ना वो बस ऐसे ही होता है जैसे कि एक आम बंदे का जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ। तो मुझे याद आया कि एक नौजवान था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अली बिनार, ठीक है, मिलियनेयर, बहुत ही कम एज में अल्लाह ताला ने उसको बहुत जो है वो माल और दौलत से नवाजा था, ठीक है, शायद फलस्तीनी था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शायद पैदा हुआ था। उसको हो गया कैंसर, ठीक है? अब जब उसको डॉक्टर्स ने बता दिया कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम बस चंद दिन के मेहमान हो, ठीक है ना, तो अब अल्लाह ने तौफीक दी कि उसने अपने गुनाहों से तौबा करी और उसने अपनी बाकी मानदा जितनी जिंदगी थी ना वो सारी इबादतों में और इंसानियत की मदद के अंदर गुजारी, जितना उसके पास माल था वो सब उसने चैरिटी के अंदर लगाया ना, और खूब उसने बहुत मेहनत करी। वो बंदा, उसका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू कभी कई साल हो गए वो मैंने देखा था, तो उसमें वो रो रहा था और रोते हुए पता है क्या कह रहा था, वो रोते हुए कह रहा था कि इट टुक मी ए मैन इन अ सूट, इट टुक मी ए मैन इन अ सूट टू टू नो या टू बी टोल्ड दैट आई एम गोइंग टू डाई, दैट आई एम गोइंग टू डाई। क्या मतलब? कि जो डॉक्टर साहब थे ना वो सूट बूटेड डॉक्टर साहब थे, ठीक है, तो वो डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया ना कि तुम अब मरने वाले हो, तब मैंने उस बात पे यकीन किया। लेकिन उसने कहा कि आई नेवर लिसन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु हैड ऑलवेज बीन टेलिंग मी, यानी नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों से, आप की सुन्नत से, कुरान से, मुझे हमेशा बताया जा रहा था कि भाई तुमने एक दिन मर जाना है, तुम दुनिया को की जिंदगी को जो है ना वो वेस्ट ना करो, जाया ना करो, दुनिया की जिंदगी को आखिरत की कमाई के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन आई नेवर पेड हीड, मैंने नई बात मानी नबी अलैहिस्सलाम की। बिल आखिर एक सूटेड बूटेड काफिर इंसान को आके मुझे बताना पड़ा कि अब तुमने मरना है, तब मैंने बात मानी। क्या हमारा यही मामला नहीं है? हमारे मशायख हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन बिल्कुल एक कान से सुनते भी नहीं है। पता नहीं वो उर्दू का मुहावरा है तो इस वजह से बोल रहा हूं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं, वरना तो हकीकत शायद ये है कि हम एक कान से भी नहीं सुनते, ऊपर से ही उसको गुजार देते हैं। लेकिन कोई काफिर आकर के हमें वो बात बता दे ना, तो हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा होगा, फिर हमें जो है वो कुछ छुलबुली शुरू होती है कि अच्छा अब हम कुछ करते हैं, ठीक है? क्यों? हम अपने सोर्सेस को, जो कि सोर्सेस हमने छान फटक करके वो सोर्सेस अडॉप्ट किए हैं ना, अगर नहीं किए तो भाई छान फटक के करें, अब तक क्यों नहीं किए, छान फटक करके जो है वो सोर्सेस क्यों नहीं अडॉप्ट किए? छान फटक करके अकल इस्तेमाल करके सही सोर्स को अडॉप्ट करें, इल्म हासिल करने की सही सोर्स, भागे भागे हम ये नहीं कह रहे थे यहाँ पे, हरगिज कोई इस बात को ये मत समझे कि इल्म हासिल करना जो है वो उससे यकीन मिलता है, इस वजह से अब जो जाकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है खवातीन, राइट। यहाँ पे ये मैं अपने सर नहीं लेना चाहता, बिल्कुल ठीक है ना, कि ये इल्म हासिल करना, कि भी साइंस का इल्म हासिल करने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हासिल हो गया था, अब जो है माशाल्लाह 131 खवातीन जो सुन रही हैं वो कहेंगे अच्छा हमें भी जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले साइंस पढ़ाते हैं। भाई सही सोर्स से इल्म हासिल कर, ये इल्म जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की कोई मीरास नहीं है कि जहां से आपको ये इल्म हासिल होगा जिससे कि आपको हकीकत समझ में आएगी और जो है वो यकीन हासिल होगा, हरगिज नहीं, बल्कि वहां पे तो यकीन की ऐसी की तैसी हो जाएगी आपके, जो है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो काफिरों की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है और वहां पे अल्लाह की नाफरमानी के जरिए से जो है वो आपको इल्म दिया जाएगा, तो वहां पे आपका इल्म जो तो है ना वो नुकसानदेह इल्म होगा, उससे यकीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो सही सोर्सेज हैं इल्म के, ठीक है, जो कि वाफिर मकदार में और वाफिर तरीके से हमारे पास मौजूद हैं, कुरान भी है, सुन्नत भी है, हमारे मशाइख भी हैं, दीनी साइंसदान भी हैं, दीनदार साइंसदान भी हैं, और उसके अलावा अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, अच्छी अच्छी रिसर्चेस भी हैं, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हलाल और तैयब तरीके से हम इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम उधर तवज्जो नहीं देते, हम बिल्कुल अपना वक्त जो है वो जाया कर रहे होते हैं, जिंदगी को जाया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई इससे पहले कि आपको भी कोई डॉक्टर आकर के, हमें भी कोई डॉक्टर आके बताते कि बस अब तुम्हारे पास 4 दिन रह गए हैं या 4 महीने रह गए हैं, इसके बाद खलास खत्म बात, और फिर हम उस बात को माने, तो नबी अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे उसके बाद, क्या मुंह दिखाएंगे उसके बाद फिर अल्लाह ताला को। ये हमने आपके साथ रवैया किया हुआ था कि हमने आपके नबी को तो माना नहीं, आपके नबी के जो वरसा थे उनको तो माना नहीं, और हमने काफिर के बात मानने के बाद जो है वो हमने तौबा करी है, वो भी पता नहीं तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर तौबा कर भी ली तो फिर भी क्या मुंह दिखाएंगे नबी अलैहिस्सलाम को ना कयामत के दिन। आज जो है वो मशायख को जो है वो ऐसा जो है ना वो पता नहीं क्या घर की मुर्गी दाल बराबर के भी बराबर नहीं रखते हैं, उनकी बात बिल्कुल हम मानते हैं, मान के नहीं दे रहे होते हैं, डरना चाहिए। तो इल्म हासिल करना है, सही सोर्सेस से हासिल करना है, ठीक है, और सही इल्म जैसे कि यहाँ पे लिखा जो इल्म नाफ़े होता है वो तो सही सोर्सेस से ही हासिल होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हम एक्सेप्शंस के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, रूल इज के सही सोर्स से ही सही इल्म मिलेगा और कहीं से नहीं। तबलीग दावत में हिकमत और तदबीर से काम लेना सुन्नत अंबिया है, ये इंशाल्लाह फिर तौफीक दी तो कल की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी किसी मेहमान ने भी आना था तो उनको मजीद वेट कराने की भी जरूरत नहीं है, ये टॉपिक अभी खत्म हो गया इंशाल्लाह। कोई अगर सवाल वगैरह हो, किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा है कि हजरत रमजान में थोड़ा ज्यादा किचन में वक्त गुजारने यानी खाना बनाने और खाने में ज्यादा दिल लगाने, फोन या मैसेज करने यानी बातों में दिल लगाने से रमजान की बेहुरमती में आएगा। जी, ज्यादा खाना बनाना और खाने में दिल लगाना, खाना बनाना मजबूरन बनाना पड़ रहा है तो फिर तो बेहुरमती में नहीं आएगा, लेकिन जो खाने में ज्यादा दिल लगा रहा है तो वो फिर रमजान के साथ वो बेहुरमती में ना भी आए लेकिन रमजान के डिसरिस्पेक्ट के अंदर तो आएगा कम से कम, बेहुरमती जरा ज्यादा संगीन लफ्ज है, डिपेंड करता है कितना आप इसमें आगे बढ़ जाते हैं। और फोन या मैसेजेस के अंदर यानी रमजान की इन अय्याम मादूदात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रमजान को क्या क्या फरमाया, अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन है, ठीक है ना, तो इन गिने चुने दिन यानी 30 दिन या 29 दिन हैं, तो अब इनको जाया करना जो है ना इसके ऊपर फिर वबाल आता है, तो इसको हरगिज वैसे तो पूरी जिंदगी को जाया ना करना ये हमारा उसूल होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा अहम होती है ना, अब जैसे आप गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह की सजा तो हर जगह ही मिलती है, लेकिन एक होता है हरम में जाकर के गुनाह करना, ठीक है, तो हरम में जाकर के गुनाह करना तो अल्लाह ताला की तरफ से भी कंफर्म उसकी सजा बढ़ी हुई है, और इंसान भी जो है ना फिर देखेंगे अगर आपको गुनाह करते हुए हरम में जाकर के तो फिर वो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा ही कहेंगे ना, ठीक है, वो बनता भी है, ये हरम जिस तरह से मुकद्दस है और वहां पे गुनाह करना या वहां पे फजूल के काम करना कि हरम में जाके स्विमिंग करने जाकर के, वहां पे कोई होटल मिल गया वहां पे जाके स्विमिंग कर रहा है, भाई कहीं और जाके करो यार स्विमिंग, वहां तो उमरा करने आए हो कि स्विमिंग करने के लिए आए हो, ठीक है, तो हरम की बाउंड्रीज के अंदर तो फिर जो जायज चीजें भी हैं उनको भी हमने फिर बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से रमजान मुबारक भी जो है ना वो प्लेस तो नहीं है लेकिन वो टाइम है, मुकद्दस टाइम है, बहुत इतना ज्यादा अहमियत है कि अब देखे ना मूसा अलैहि सलाम जो है, यानी टाइम एंड प्लेस की कितनी अहमियत है ना। मूसा अलैहि सलाम जो है वो वादिय ती में दाखिल हो रहे हैं, वहां पे कोई कारपेट बिछी हुई थी, वहां पे कोई संगमरमर के जो है वो लगे हुए थे, टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन क्या हुक्म फरमाते हैं अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को कि क्या है, फखदाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी तुवा, अपनी जूतियां उतार लो क्योंकि अब तुम मुकद्दस वादी में हो। मुकद्दस वादी से बाहर जूती उतार, जूती उतारने का हुक्म नहीं मिला, मुकद्दस वादी में आए हो अब जूती उतार, यानी जो जूता पहनना जो कि सुन्नत से साबित भी है, मुबाह भी है और बहुत जरूरत भी होती है इंसान को जो है वो अपने पैरों की हिफाजत के लिए, मुकद्दस वादी में आकर के जूते भी उतार दो। आने के टाइल्स नहीं लगे हुए थे, कारपेट नहीं बिछी हुई थी वहां पर उस अलैहि सलाम के जमाने में, आज ना आज बिछी हुई, ठीक है ना। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।